पैस जो है वो सिलिब्रिटी से काम चला सके। सीनापुणा करके के सीनापुणा माने सिलाई करके के कोई मशीन ला करके कपड़ा सिलाई का काम किया और दो पैसा कमा लिया, या किसी बैस भाई के, या एक प्रकार से समझो कि गोठ का काम है। गोठ क्या की जैसे देरी काटना, जैसे एक प्रकार कसीदा काटना, जैसे गंजी बनाना, बुनियान बनाना, ये कोई भी चीज खोजिया बनाना, इस प्रकार से अपने कोई भी कारीगरी से अपने शरीर का निर्वाह कर लेना बुद्धिमानी है और उसका धर्म है और कर्तव्य है, शास्त्र कहता है। किंतु एक प्रकार से थी समझो अपने से ऊंचे वर्ण की जो जीविका है उसकी तरफ कभी नहीं ताकना चाहिए। और क्षत्रिय और वैश्य जाति को दान का जो पीस है उसको तो हराम समझना चाहिए। ग्रहण के बीच के मौसम जो कि जैसे दान दिया जाता है उस प्रकार उसमें घृणा करनी चाहिए। भाई इसके लिए जो दान का पैसा है वो उसके लिए बहुत ही खतरनाक पैसा। और शूद्र के वास्ते केवल सेवा इसका था, सब वर्णों की सेवा करना उसका धर्म है। और समझो ऊपर की जो जातियां हैं उनकी वृत्ति उसके लिए निषेध है, किंतु बिल्कुल आपत्ति काल पड़ जावे ऐसी अवस्था में उसके लिए भी तो कोई आपत्ति का धर्म बतलाना चाहिए ना। तो उसके लिए आपत्ति का धर्म यही है कि सिलभ विद्या करके अपना काम चलावे, और उससे भी नहीं चले तो आगे जाकर के बस ऊंचा चढ़े तो वही स्मृति कर सकता है और आगे नहीं बढ़े। ये किसके लिए? आपत्ति काल के लिए। तो शूद्र के लिए एक प्रकार से आपत्ति काल के लिए वैश्य का धर्म है, और वैश्य के लिए आपत्ति काल में शूद्र का धर्म है जीविका के लिए। और ये जो तीन जो है यज्ञ करना, दान देना, विद्या पढ़ना, ये सब का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों जाति का धर्म है शूद्र का। शूद्र के लिए तो तीनों वर्णों की सेवा करना ही उसका परम धर्म है, और सेवा करने से शूद्र को अपने अपने धर्म के मां रत व मनुष्य संघ सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। स्वयं कर्मणा विरत संघ सिद्धि लभते नरे, स्वकर्मणा निरत सिद्धि यथा विमृति तत्णु, कि अपने अपने कर्म के मां रत हुआ पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से परम सिद्धि को प्राप्त होता है भगवान कहते हैं वो बात तुम मेरे से सुन। इस प्रकार से कहकर इस श्लोक कहते हैं यत प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वविदं कृतं स्वकर्मणात्तम व्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव, सिद्धिं विन्दति मानवे। भगवान कहते हैं कि जिस परमात्मा से यह संसार पैदा हुई है और जो परमात्मा इस संसार के मां व्यापक है, उस परमात्मा की अपने अपने कर्मों के द्वारा पूज करके और मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है अपने अपने कर्मों के द्वारा पूज करके। किंतु जो अपना जो कर्म जो है समझो कि उसमें कमी भी आ जावे तो भगवान माफ कर देते हैं, और दूसरे का जो धर्म है वो हम सुचारू रूप से भी करें तो भी एक प्रकार से हमारे को उसमें भय। तो अपना जो धर्म है वही कल्याणकारक है, दूसरे का धर्म सबके लिए भयदायक है। तो ये संक्षेप से मैंने वर्ण धर्म की बात कही। इसी प्रकार से आश्रम धर्म है। आश्रम धर्म जो है वो समझो कि बहुत ही अपने कठिन है, वो भी आपको मैं संक्षेप से कह देता हूं कि जैसे ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचर्य आश्रम के बीच के वहां ब्रह्मचारी का ये धर्म है कि भिक्षा मांग करके जाओ और जाकर के गुरु के पास में रख, गुरु के अर्पण कर, और उसमें गुरु जो कुछ देवे बस उसे वही संतोष करे। इस प्रकार से भिक्षा वृत्ति से अपना निर्वाह करे और गुरु जो है उनके चरणों में रहे। हवा चलती है तो गुरु को छू करके और फिर वो हवा शिष्य को लगे उस तरफ में बैठना चाहिए, और शिष्य को जो हवा लगे और वो फिर गुरु को जाकर के स्पर्श करे तो वो शिष्य का धर्म नहीं है। जो हवा चलती हुए तो किस तरफ में बैठना चाहिए कि हवा जो जिस तरफ से आ रही है उस तरफ में गुरु को बैठा करके और हवा जो जा रही है उस तरफ में शिष्य को बैठना चाहिए। ऐसे ही जैसे गंगा की धार है, गंगा का जो जल है तो गंगा का जल अपने उसमें गुरु ने स्नान कर लिया और गुरु को स्नान करने के बाद वो जल आगे चला गया, उस जल के मां तो शिष्य स्नान कर सकता है किंतु शिष्य आगे जाकर के स्नान करे और वो शिष्य के स्पर्श की हवा जल गुरु को आकर के स्पर्श करे, ये एक प्रकार से उसका शिष्य का धर्म नहीं। ये सूक्ष्म बात आपको मैं बताता हूँ। और भी ख्याल करना चाहिए कि गुरु भी जा रहा है शिष्य भी जा रहा है, किंतु गुरु की जो छाया पड़ती है उस छाया के ऊपर शिष्य का यदि पैर पड़े तो वो गुरु का अपमान करता है। उसको ऐसा चलना चाहिए कि एक प्रकार से थी अपने अपनी जो अपने अपनी जो छाया है उस पर गुरु के पैर भलाई पड़ो, किंतु गुरु की छाया के अपना पैर नहीं पड़ना। छाया का भी इतना बचाव करना, हवा का बचाव करना, जल का बचाव करना, सब प्रकार से तुझको सावधान रहना चाहिए। और गुरु के सम्मुख जब नमस्कार करे तो इस प्रकार से नमस्कार करना, इस प्रकार से क्या कि नीचे तो बावा हाथ है और ऊपर दायां हाथ है, क्योंकि दायां हाथ पवित्र है, इस वास्ते दायां हाथ ऐसे रहना चाहिए। और गुरु के जो दोनों चरण है वो हमारे हाथों में आने चाहिए, माने बाएं हाथ में बावा चल और दाएं हाथ में दायां, क्योंकि हमारा जो बायां हाथ है गुरु के दाएं चरण के नहीं लगाना चाहिए, इसलिए इस प्रकार से उनको नमस्कार करना चाहिए गुरु को। और कहते हैं इसे लेकर के मस्तक से नमस्कार करना, दोनों हाथों में चरण रख करके क्या मस्तक से, ये प्रणाम करने की विधि हमारे शास्त्रों के वहां बताई, शिष्य का क्या कर्तव्य। और शिष्य को एक चुप होकर के बैठना चाहिए, मौन होकर के, गुरु के हुक्म की माफक ही नहीं उनके संकेत की माफक चलना चाहिए, उनके मन की माफक चलना चाहिए, उनके उद्देश्य की माफक चलना चाहिए। जो ऐसा जो शिष्य है वो वास्तव में शिष्य है, जो अपने गुरु के हुक्म की माफक तो चलता ही है उससे भी वो श्रेष्ठ है, जो संकेत की माफक चलता है उससे भी वो श्रेष्ठ है, जो उनके मन की माफक है और उनके उद्देश्य की माफक है, ये उसका शिष्य का काम। और समझो कि ब्रह्मचारी को, ब्रह्मचारी को कभी मुंह नहीं देखना चाहिए, दर्पण के मां मुंह नहीं देखना चाहिए, ब्रह्मचारी को अपने कभी तेल नहीं लगाना चाहिए, या तो जटा ही रखनी चाहिए या छोर कर्म भी कराना। और समझो छत्ता कभी नहीं लगाना, पैरों के मां जूती नहीं पहननी, क्योंकि उसको तो ब्रह्मचारी को तो एक योग पुरुष बनना है ना, तो इस प्रकार से अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। कि जो मनु जी ने अपने दूसरे अध्याय में सब बातें लिखी है ब्रह्मचारी के लिए किस प्रकार से अपना जीवन बिताना चाहिए, उसको अपना जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, उसको संयम से रहना चाहिए, मन और इंद्रियों को वश में करके रहना चाहिए। और बालक के लिए कि माता पिता और आचार्य जो है ये तीनों जब तक जीते हैं तब तक उनको दूसरे धर्म के पालन की कोई आवश्यकता नहीं, इन तीनों की सेवा करना परम धर्म है और बाकी सब उपधर्म। यदि कोई दूसरे धर्म का पालन भी करे तो माता पिता के हुक्म से और उनके हित के लिए करे, अपने लिए नहीं करे। बताया गया है कि माता जो है ये पृथ्वी है, पिता जो है अंतरिक्ष है, और गुरु जो है सो देवलोक है। जो माता पिता और गुरु तीनों को सेवा करके खुश कर लेता है वो तीनों लोकों को जीत लेता है, उसके द्वारा तीनों लोग जीते गए हैं। माता जो है वो दाक्षिणा नगरी है, गुरु जो है अपने अपने जो पिता जो है वे अपने पिता जो है गार पतंगनी है, और गुरु जो है वो आवानी है। जो इन तीनों की सेवा करता है उन्होंने तीनों अग्नियों की सेवा कर ली, तीनों लोगों की सेवा कर ली, उन्होंने तीनों अग्नियों को जीत लिया, तीनों लोगों को जीत लिया, उसने सब कुछ अपने धर्म का पालन किया। इन तीनों की सेवा ही उनका लिए परम धर्म। ये बालकों के ब्रह्मचारियों के धर्म बड़े संक्षेप से मैंने बतलाए हैं, और सामान्य जो धर्म है वो सबके लिए। जैसे एक समान दमोस्ते यंग सोच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सप्तमय करो दो दस कंग धर्म लक्षण। ये सामान्य जो धर्म है ये समझो कि आपने छठे अध्याय के बीच के मां जहाँ एक साधुओं के धर्म आए हैं वहां आए, तो साधुओं के लिए तो ये स्वाभाविक होना चाहिए और दूसरों के लिए ये पालनीय है, पालन करने चाहिए। जैसे गीता के बीच में ब्राह्मणों के मां तो स्वाभाविक ही होने चाहिए, समूह दमस्तपोतंग शांति राज जो वेद है ज्ञान विज्ञान वास्तिक ब्रह्म कर्म स्वभाव जम, ब्राह्मणों में तो स्वाभाविक होने चाहिए। और दूसरों के बीच के मां समझो कि ये उनके लिए साधन है, उनके लिए ये अपने में लेने की कोशिश कर रही थी। तो इसी प्रकार से थी ये संक्षेप से आपको ब्रह्मचारी के धर्म की बात कही। अब गृहस्थियों की तो धर्म बड़ा विस्तार है, तो भी संक्षेप से आपको बता दूं, अपने गृहस्थियों का यह धर्म है कि अपने घर के ऊपर कोई अतिथि आ जाए, कोई अभ्यागत आ जाए तो उसको देख करके फिर भोजन करना चाहिए। मनु में तो ये बतला है कि अपने सामान्य जाति वाला अपने घर के ऊपर अतिथि और अभ्यागत हो सकता है, और अपने से ऊंची जाति वाला हो सकता है, अपने से नीची जाति वाला नहीं हो सकता। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के यहाँ चंडाल जो है, शूद्र जो है, ये एक प्रकार से थी अतिथि, या ये एक प्रकार से थी भिक्षु, ऐसा नहीं हो सकते, ये निषेध है शास्त्र के वहां निषेध है। इसी प्रकार से थी समझो कि क्षत्रियों के वैश्यों के लिए, क्षत्रियों के लिए सबके लिए तो क्या करना चाहिए कि अपने घर के ऊपर आओ तो अपने शक्ति के अनुसार उनकी अतिथि की सेवा करनी थी, अतिथि को साक्षात नारायण का स्वरूप मान करके हर उनकी सेवा करनी थी। बोलो सेवा करने के पास पैसा नहीं हो, योग्यता नहीं हो, अपने खुद ही भूख मरता हो तो उसके लिए भी कोई धर्म है क्या? उसके लिए है। उस गृहस्थी को चार बात अपने घर में रखनी चाहिए जो पैसा खर्च नहीं हो। चार बात क्या कि आए हुए अतिथि के लिए बैठने के लिए भूमि और आसन, आसन समझो कि जंगल में से कुशा काट करके लिया और आसन बना ले, पैसा थोड़ा ही लगे उसमें, तो कुशा का आसन दे दिया बैठने के वास्ते, या उनका दे दिया कोई भी आपके घर के मां जैसा आसन हो वो आसन दे दो। और समझो कि जल पिलाना चाहिए और मीठा वचन कहना चाहिए। जल तो कुएं में से निकाल करके ले आओ, उसमें पैसा थोड़ा ही लगता है। और वचन जब भगवान आपको जीवा दे तो दरिद्रता क्यों? तो ये चार चीज जो है तो हर एक गृहस्थी के घर के मां रहनी चाहिए, भूमि और समझो आसन और मीठा वचन, मधुर वचन और समझो कि जल पीने के लिए जल। पैसा तो लगता है, तो अन्न का लगता है, वस्त्र का लगता है, किंतु जल का तो पैसा लगता ही नहीं। इतने में उनके गृह का निर्वाह हो गया, उनके धर्म का पालन हो गया। हमारा धर्म ऐसा है, हमारा सनातन धर्म, क्या गरीब से गरीब आदमी उसका पालन कर सकता है? हमारा ऐसा धर्म नहीं कि उसको पैसे वाले ही पालन सके। पैसे वाले यदि पालन कर सकते तो गरीब तो बेचारे मर जाते। बोले हम क्या पता कि भगवान ने क्या धर्म बनाया, हम गरीबों के लिए नहीं बनाया, पैसे वाले के लिए बनाया। तो नहीं, गरीबों के लिए, धनियों के लिए, सबके लिए वो धर्म ऐसा भगवान ने बनाया। और हमारा गृहस्थ का अपना क्या धर्म है कि समझो कि जैसे स्त्रियां हैं तो स्त्रियों का यह कर्तव्य है कि अपने घर के मां जो बड़ी स्त्रियां हैं, जो बड़ी है पद में बड़ी है या अवस्था में बड़ी है या एक से अपने वर्ण में बड़ी है स्त्रियां, तो वो स्त्रियां जो स्त्रियां को अपने सत्कार करें। किसी भी प्रकार से अपने जो बड़ी हुए, अरे यह खोज करनी चाहिए कि अपने से किसी प्रकार से बड़ी हो तो हम उसकी सेवा करें तो हमारा कल्याण हो। तो एक प्रकार से थी उसके चरणों में नमस्कार करना, उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये मातृस्त्री का कर्तव्य है। बहू का तो ये कर्तव्य है कि अपनी जो सास है वो अपने माता के समान, वो अपने माता से भी बढ़कर के माता, धर्म की माता है, अपने जन्म देने वाली माँ है, वो तो पाप की माँ है। और अपने सास जो है अपने पति की जो माँ है वो अपने धर्म की माँ है। इस प्रकार से उसको समझे। और सास का यह कर्तव्य है कि वो अपनी बहू जो है वो अपने धर्म की बेटी है, अपने जो पैदा की है वो तो पाप की बेटी है, और जिसे जो अपने घर में आई है वो अपने धर्म की लड़की। यदि समझो कि अपने लड़की की अपनी बहू की लड़ाई हो जा, बेमनस्ता हो जा, तो उस जगह माता का कर्तव्य है कि अपने बहू की पक्ष करे, अपने लड़की की पक्ष नहीं करे। जो लड़की की पक्ष करती है समझो को गिर जाती है, वो अपने बहू की दृष्टि से गिर जाती है। आगे जाकर के वो बहू, जिस दिन उस बहू का चलन होगा उसका, वो बदला चुकावेगी कई गुणा अधिक, उसको दंड देगी एक प्रकार से, उसके हृदय के मां वो बात जम जाएगी। तो इस वास्ते सासू को यह चाहिए कि अपनी पुत्री से भी बढ़ करके अपनी बहू के साथ में व्यवहार करे। और दया करनी चाहिए, वो अपने माता पिता को छोड़ करके तुम्हारी दासी होकर के तुम्हारे यहाँ समझो कि आकर के रही है, और उसको तुम दुदकारोगी, उसकी खबर नहीं लोगी तो कौन खबर लेगा? कोई पुरुष कह देते हैं कि हमारी स्त्री बीमार हो गई तो हम उसके पति होकर क्या सेवा करें? अरे वाह, वो तो तुम्हारी स्त्री है, तुम्हारी स्त्री के लिए तो तुम देवता हो, तुम्हारी स्त्री के लिए तो तुम पूज्य हो, किंतु तुम्हारे लिए तुम्हारी स्त्री तुम्हारा आधा अंग है, तुम्हारे लिए तुम्हारी स्त्री मित्र है, उसका समझो कि अपने अन्न से वस्त्र से उसकी सेवा करनी चाहिए, और आपत्ति काल के मां उसकी विशेष सेवा करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो धर्म को नहीं जानता है वो पुरुष। तो पुरुषों का यह कर्तव्य है कि अपनी स्त्री के साथ में ऐसा व्यवहार करना चाहिए। जो पुरुष अपनी स्त्रियों गालियां देता है, मारता पीटता है, वो घोर नरकों के बीच के मां जाता है, वो एक प्रकार से थी महान हिंसक पापी है एक प्रकार से। तो उसको ये ख्याल करना चाहिए, ये नहीं कि वो स्त्री को मोल लेकर के आए हैं, और मोल लेकर के आवे तो भी एक प्रकार से ये थोड़ी है कि उसको मारना पीटना गाली देना ये मनुष्यता नहीं है, ये मनुष्य पने के बाहर की बात है। तो इस प्रकार से गृहस्थियों को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। पिता का तो यह कर्तव्य है कि अपने पुत्र के साथ के माँ जब उसकी 16 वर्ष की आयु हो जावे तो उसको मित्र के समान समझना चाहिए। नीति है, शास्त्र है, लालियत पंच वर्षाणी 10 वर्षाणी तारियत, लालियत पंच वर्षाणी 10 वर्षाणी तारियत, प्राप्त सुषोड़ते वर्ष से पुत्र मित्र समाज करे, 5 वर्ष तक तो उसका लाड करे और उसके 5 के बाद और 10 वर्ष और 10 वर्ष तक उसको शिक्षा देवे, ताड़ना करे, उसके उसको बार बार एक प्रकार से चिताता रहे और 15 के बाद जब 16 वर्ष की उम्र हो जावे तो मित्र के समान उससे सलाह करके अपने घर का काम करे। और पुत्र का ये है कि जैसे मातृदेव हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो, उसका ये कर्तव्य है कि माता को, पिता को, आचार्य को तू देवता के समान मानने वाला बन। ये तो शास्त्रों की आज्ञा है, ये मनु जी की आज्ञा है, ये जो कि तैतरीय उपनिषद का ये कथन है और भी हमारे सब शास्त्रों का ये कथन है। पुरुष जो है केवल माता पिता की सेवा से परम गति को प्राप्त हो जाता है। जैसे मूक चंडाल अपने माता पिता की सेवा करके भगवान के परम धाम को चला गया, ये कथा एक प्रकार से नरोत्तम ब्राह्मण के अपने आख्यान के बीच के माँ पद्म पुराण में आती है। इसी प्रकार से पति की सेवा करके समझो कि शुभा नाम की स्त्री जो है सो परम गति को प्राप्त हो गई है, ये कथा भी उसे उसी पुराण के बीच के माँ पद्म पुराण में आती है। समझो कि आपने शुक्ला जो है ककल वंश की स्त्री इस पातिव्रत धर्म को पालन करके और पति के सहित अपने उत्तम गति को चली गई है। ब्रह्मा विष्णु महेश उसके घर के ऊपर एक प्रकार से उस पतिव्रता के प्रताप से वहां आकर के दर्शन दिए हैं। तो आप सोचो कि कितना उसका प्रभाव है। ये शांडिली जो है कोड़ी की स्त्री पातिव्रत धर्म को पालन करके कोड़ी पति के सहित उत्तम गति को चली गई है। अनुसुया जो कि अत्रि ऋषि की स्त्री थी जिसके ब्रह्मा विष्णु महेश ने अंश से अवतार लिया है एक पातिव्रत धर्म के प्रभाव से, तो पातिव्रत धर्म स्त्री के लिए ऐसा है कि उसके लिए और कोई भी कुछ भी चीज नहीं है। इसी प्रकार से थी बालकों के लिए माता पिता की सेवा के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, गुरु की सेवा के समान शिष्य के लिए कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो इस प्रकार से थी हमारे ग्रस्तों के बहुत से ऐसे धर्म बतलाए हैं, ये इसका बड़ा विस्तार आपको देखना हो तो मनु की चौथे अध्याय के आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार से थी समझो कि वानप्रस्थ का धर्म, वानप्रस्थ का जो धर्म है बड़ा कठिन धर्म है, उस धर्म को तो हम इस समय में पालन करना हमारे लिए बहुत ही कठिन। वानप्रस्थ आश्रम का जो धर्म है वो बड़ा भारी तप है उसके बीच के माँ, मन और इंद्रियों को एकदम वश में करना चाहिए। और किस प्रकार से कि जब आपने वर्षा ऋतु होती है तो वर्षा ऋतु के बीच के माँ समझो कि गीला कपड़ा से या चौड़े बैठ करके पहाड़ की चोटी के बैठ करके और अपने वर्षा ने मस्तक पर सनी चाहिए प्रसन्नता के साथ के बीच में। और ग्रीष्म काल के बीच के माँ, ग्रीष्म काल के बीच के माँ समझो दोपहर के समय जब खूब कड़ी धूप पड़ती है उस समय में मैदान के माँ बैठे और चार तरफ आग जलावे और ऊपर से सूर्य की तप इस प्रकार पंचाग्नि तप करे। और समझो कि जिस समय के बीच के माँ शीतकाल आ जावे तो शीतकाल के बीच के माँ समझो कि जल के माँ अपने रहे या गीला कपड़ा पहन करके के सो रहे शीतकाल के बीच के माँ, इस प्रकार से 4 महीना अपना धर्म का पालन करे। और इस प्रकार से थी उसका जो धर्म बताया गया शास्त्रों के बीच में कि हल से पैदा हुआ अन्न नहीं खावे, जो जंगल के बीच के माँ बिना हल जोते हुए जो नाच पैदा हुए एक प्रकार से उसी अन्न को खाना चाहिए। जमीकंद है, फूल है, फल है, कंद है, मूल है, ये बन के जो जितने पदार्थ ये खा सकते हैं और अपने आप से पैदा हुआ जो अन्न है उसको भी खा सकते हैं, किंतु बन की चीज अपने हल से जोती हुई चीज सुने इस प्रकार से अपनी जीविका करे। और निष्कर्म उसके लिए जैसे आपने गृहस्थी के लिए बताया गया है अग्निहोत्र करना और समझो कि जिस जिस प्रकार से आपने गृहस्थियों के लिए बताया उससे भी और अधिक आपने वान प्रशासन के वहां बताया गया। उनके काम ही क्या है, तप करना, जप करना, यही इसी वास्ते उसका नाम तपस्वी है। वो आश्रम एक प्रकार से वानप्रस्थ जो है वो तपस्वियों का आश्रम है। समझो पूर्व के जमाने में ऋषि लोग वन में क्या करते थे, तो स्त्रियां भी साथ में रह सकती है, अकेला भी वो कर सकता है। जब वो 50 वर्ष की उम्र हो जावे, ये बताया कि 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और 50 वर्ष की उम्र तक गृहस्थ में रह करके गृहस्थ का पालन करना चाहिए, 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ आश्रम का पालन करना चाहिए और वानप्रस्थ आश्रम के बीच के माँ अकेला जा सकता है। और स्त्री चाहे कि मैं भी आपके साथ में रहना चाहती हूँ तो वो स्त्री भी साथ में रह सकती है। और वो स्त्री यदि अपने पुत्रों के साथ में रहना चाहे तो उसकी इच्छा पुत्रों के साथ में रह सकती है।
और अपने साथ में रहना चाहे तो अपने साथ में रह सकती है, किंतु स्त्री पुरुष को दोनों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। रात्रि में सोए तो बीच में कोई चीज रख करके सोना चाहिए, जिससे स्पर्श भी नहीं हो एक दूसरे का। और इस प्रकार से भाव रखना चाहिए कि एक प्रकार से जैसे मैंने त्याग कर दिया, कहना नहीं चाहिए किंतु मातृभाव उसको और उसको अपने भाई बहन के समान जैसा ये काम समझ लो कि एक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उनकी मानसिक वृत्ति भी खराब नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से अपने बाण प्रशासन की अपने बात आती है तो बड़ी कठिन बात है। और संन्यास आश्रम की बात तो समझो, मैं आपको क्या कहूँ, वो तो सन्यासी महात्मा लोग ही अच्छा है तो अच्छी बात है, फिर भी आप मेरे से कहो तो थोड़ी बहुत मैं कह देता हूँ कि जैसे आजकल के इस समय के बीच के माँ कलयुग आवेगा ऐसा समझ करके के संन्यास आश्रम के लिए समझो कि आपने स्मृतियाँ जो है उसमें तो थोड़ा ऐसा भी कह दिया कि भाई एक उस समय के बीच के माँ ये संन्यास आश्रम को मना किया कि भाई सन्यासी बहुत भारी वैराग हो तो नहीं तो नहीं लेना चाहिए मना। अच्छा जब लेवे तो उसके बीच के माँ ब्राह्मण ही सो ले सकता है, संन्यास लेने का अधिकार ब्राह्मण का ही है। उसके फिर समझो कि ये भेद है, एक तो जैसे दंडित स्वामी होते हैं और एक है तो समझो कि दंड का त्याग कर देते हैं, एक तो ऐसा परमहंस होते हैं और एक हंस होते हैं। परमहंस तो उसको कहते हैं कि कोई प्रकार का वस्त्र नहीं रहे, कोई भी प्रकार का संग्रह नहीं करे, कुछ भी कोई चीज ऐसा नहीं रखे और केवल मात्र समझो कि एक प्रकार से कोई खुआ दे तो खा ले, न खिला दे तो भूखा ही रहे, अजगर वृत्ति से अपने निर्भाव करे। अजगर एक प्रकार से वो भी कुछ परिश्रम कर लेता है, फिर वो तो बिल्कुल ही परिश्रम नहीं करे। जो परमहंस है कोई प्रकार की क्रिया नहीं करे, तो एक प्रकार से कोई उसको चाहे खिला दो पिला दो, न खिलाओ न पिलाओ। और जो हंस है वे एक प्रकार से कोटिन जो है कथा जो है इसको धारण कर सकते हैं, माने बहुत ही कम एक प्रकार से धारण कर सकते हैं। ये ब्राह्मणों के लिए उस कोटि का संन्यास है और क्षत्रिय जो है उसके लिए संन्यास नहीं, वैश्य के लिए संन्यास नहीं। यदि क्षत्रिय की इच्छा हो जाए संन्यास लेने की तो एक प्रकार से अपना पैर नहीं पूजावे। क्षत्रिय यदि सन्यासी हो तो बहुत देखे संन्यास उसके लिए है, ये विचलता ही रहे एक प्रकार से, एक जगह झोपड़ी बांध करके नहीं रहे, एक जगह तो आपने आज कल काल कहीं और चौमासे के बीच के माँ प्रत्येक सन्यासी के लिए चार महीना एक जगह रह सकता है और आठ महीना घूमता ही रहे, आज यहाँ कल यहाँ, शहर के माँ तीन दिन, बड़े शहर में छोटे गांव के माँ एक दिन, जितना ही बात करे और समझो कि रात्रि के समय बात करे दिन के बीच के माँ अपने जिसका कम और जो कुछ अपने सन्यासी का धर्म बताया वो करें। तो सन्यासी के वास्ते विद्या का जो है विधान है वो भी बड़ा कड़ा है, विधान जाकर के नारायण हरि ऐसी बात लगाई और वहाँ कोई पाठा जवाब नहीं मिला, नहीं ठहरे कल जो वहाँ से या वहाँ कोई दूसरा साधु वहाँ खड़ा है तो भी वहाँ नहीं खड़ा हो है, क्योंकि एक व्यक्ति को ज्यादा भार आ जाएगा और विद्या लगाने कम जा रहे कि व्यक्ति लोग अपने भोजन बना करके और कल जो बंद कर दे रहे अग्नि के वहाँ धुआं निकलना बंद हो जा रहे, बिल्कुल अग्नि शांत हो जा रहे, ये नहीं तो हमारे वास्ते और बना देगा। ऐसे अवस्था के बीच के मान नहीं धुआं शांत होने के बाद नहीं जा रहे तो वो जो कुछ घटी बनाया है उसी के वहीं साधु को दे रहे और आपने तो उसमें कम घटे उसमें अपना निर्भाव कर ले रहे, ये व्यक्ति का कर्तव्य है। और इस प्रकार से सात घरों से और ज्यादा घर नहीं जा रहे, चार घरों में काम चल जाए तो सात भी नहीं जा रहे और जाकर के जिसका घूम कर के लिए वो उत्तम दर्जे की उसके पास में हिस्सा है। और कई लोग जो कपड़ा लड़का जो फाड़ करके सीख दिया गया किसी के काम में नहीं आता उनकी एक प्रकार का कथा बना है। और गई बात खेती आप लोगों ऐसे जीवन जिता है और शहर के बीच के वहाँ हिस्सा के वास्ते जाए और काम की कोई भी आवश्यकता नहीं और जो उनके पास में शिक्षा दीक्षा देने के वास्ते आए उनको एक प्रकार से की उत्तम दर्जे की आत्मा के कल्याण विषय की ब्रह्म विषय की यही शिक्षा सो दीक्षा देवे। संसार की शिक्षा दीक्षा की कोई भी जरूरत नहीं उसके लिए, तो समझो कि और बहुत सा रास्ता है, वे तो अपने उपरांता में रहे जितनी उसके वहाँ उपरति है और जितनी उसके वहाँ जितना वैराग है उतनी उसके लिए शोभा है और जितना संग्रह है उतना ही एक प्रकार से उसके लिए निंदा है। समझो कि अपने साधु होकर के और समझो कि अपने प्रीति से ती सोने ने छू लेवे या कामनी ने छू लेवे तो सही नरक में जावे। इच्छा पूर्वक यदि इस मामक कर लेवे तो उसके वास्ते बड़ा भारी दंड शास्त्रों में बताया गया है। तो साधुओं का धर्म इतना कठिन है कि एक प्रकार से मैं क्या कहूँ कि एक प्रकार से साधु लोग ही जानते हैं, मेरा कोई कर्तव्य नहीं कहने का, किंतु वर्णाश्रम के विषय में सभी कहना चाहिए। और बईस होकर करके कि तो संन्यास का कोई भी उसका कहीं धर्म नहीं है। और यदि बहुत ज्यादा इच्छा हो जावे तो उसके लिए ये बतलाया है कि वो कुटी तक संन्यास कर सके, एक कुटी बनाकर के बन के बीच के मां रहे। और वो अपना जो कुल का जो आदमी है, अपना जो पुत्र पोता घर वाला जो है, उनकी भेजी हुई भिक्षा खावे, बाजार की नहीं खावे, दुनिया की भिक्षा ऐसा नहीं ग्रहण करे, केवल मात्र अपने वो भिक्षा वो ही ग्रहण करे। क्योंकि जो अपने कुल में कोई नहीं हो, अपने बेटा पोता और कोई नहीं हो, तो अपने जाति की ले सके, बस उससे और नीचे नहीं, वो ब्राह्मण के यहाँ समझो कि नहीं। और अपने बड़ी सोकर के यदि अपना पैर पूजावे तो घोर नरक के बीच के वहां जा। अपने से ऊंची जाति से यदि पैर पूजावे, आज मैं बईस हूँ और आज मैं ब्राह्मणों से पैर पूजाने लगूं, साधुओं से पैर पूजाने लगूं, तो पूजने वालों को कोई समझो दोष नहीं है, किंतु मेरे वास्ते नरक पर आप उससे तैयार हो। तो हर एक भाइयों को ये ख्याल करना चाहिए कि हमारा बईस का क्या धर्म है। मैं बईस हूँ तो कड़ी बात भी कह सकता हूँ, क्योंकि मैं बईस हूँ, मैं मेरे लिए पहला कहता हूँ, तब दूसरों के लिए लागू पड़ती है। किसी की इच्छा हो तो माने, नहीं इच्छा हो तो नहीं माने। तो ये संक्षेप से बने समझो कि वर्ण धर्म का थोड़ा दिग्दर्शन आपको करा दिया। अब समय हो गया, अब एक घंटा हो गई। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण यावर रामचंद्र की मोरमुग्ध बंसी वाले।
आश्रम धर्म विषय यह व्याख्यान श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा आज मिति आषाढ़ कृष्णा द्वितीया को गीता भवन के हॉल में दोपहर को 11 बजे करीब दिया गया।